दूसरी बात क्या है कि मकसद क्या है कि दिमाग का बुनियादी असूल कि उसको गोल दीजिए, तो अपने माइंड को अच्छे गोल्स दीजिए। जिनको हम कुछ काम नहीं देते ना, वो खुद ही बेकार काम ले लेते हैं। ये जुमला लिख लीजिए अपने लिए। जब आप किसी को कहते हैं ना जी ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, वो खुश होता है, माशाल्लाह मुझे काम दिया गया। बस उसको भी चाहिए कि फिर उसमें तन मन धन लगा दे ताकि अगली दफ़ा भी उसको ही मिले। अदरवाइज बाइंड बैठा सो मैं क्या करूँ, अच्छा ये कर लूँ। देखिए मैं एक छोटी मिसाल देना चाहती हूँ, शायद किसी को फ़ायदा दे दूँ। जैसे माँ घर में सालन रोटी बनाती है, माँ ने आज सबको एक गोल दे दिया कि आज ये खाना है, ये रोटियाँ, ये सालन, और सब मिल के खा लें तो वेल डन, बेस्ट थिंग यही है। नहीं है तो भाई ये पका के रखा हुआ है, आप में से हर एक आता जाएगा तो खाता रहेगा। अब जो माँ खाना ना बनाए, कोई फ्रिज में से फ्रूट निकाल कर खाएगा, कोई कुकीज़ खोल कर खाएगा, और कोई चॉकलेटें खाएगा, और एंड पे पता क्या होगा, जब माँ आएगी ना घर में कहेगी कुछ था ही नहीं, हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। देखा जाए तो माशाल्लाह पेंट्री काफ़ी हल्की हो चुकी है, पेट भर चुके हैं। बस इसको समझिए, अक्लमंद माएँ अपने बच्चों को बेस्ट गोल देती हैं। जैसे खाने का मिसाल दी है ना, इसी तरह सुबह उठते बेटा आज आपने ये, आपने ये, आपने ये करना। द बेस्ट मैनेजर इज़ अ मॉम। ड्यूटी लिस्टें लगती है ना स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स में, हमारे भी लगती रहती हैं। अपने घर वालों के साथ भी सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं, ब्यूटीज़, ड्यूटीज़, लव, केयर की लिस्टें बना के रखें तो गोल दीजिए। और मकसद को हासिल करने का लाह अमल भी फिर वाजे हो, फिर कामयाबी होती है, तरीक़ेकार भी ठीक हो। आप ऐसा काम करें ही ना जो कि ना हो। यहाँ तक तो बात हो गई, अब आपको आगे एक नई चीज़ दे रही हूँ जो अभी आपसे डिस्कस नहीं की इन दो सेशंस में। और वो क्या है कि पैदा तो हर बच्चा एक ही तरह का होता है, अगर अंदर से खोल कर देखे तो उसका ब्रेन बिल्कुल वैसे ही है। उसके फ्रंट ब्रेन के पार्ट में सोच है, तो पीछे तफक्कुर है, तो कुछ है। आपको पता है कि कुरान ने साबित किया है कि बंदे के दिमाग के कितने हिस्से हैं और उसमें कहाँ है। सिर्फ एक मिसाल देना चाहती हूँ, कुरान में आता है कि हम उसको उसकी पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। मैं आपको आयत भी बताती हूँ ताकि कल आप किसी से ये शेयर करें तो बात भी सही हो, और फिर आप जब कुरान की ये बात सुनते हैं तो आपका दिल भी खिल जाता है कि वाह अल्लाह का कलाम ऐसी प्यारी बातें भी करता है जो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी ना पता हो। सूरत अलक है, पीछे से ये असल में अबू जाहल का वाकया था जिसको बग़ैर नाम लिए अल्लाह ताला ने पेश किया कि जब अल्लाह के नबी नमाज अदा करते थे ना तो सजदे की कैफियत में जब होते तो ये आकर ऊँट की ओझड़ी रख देता। और आपने सुना होगा हज़रत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा छोटे छोटे अपने मासूम हाथों से अल्लाह के नबी की पुश्त से वो ओझड़ी हटाती और पूछती कि अब्बा आपने इनका क्या बिगाड़ा है, या आप कितने दुश्मन के हो गए हैं। याद आ गया होगा ये सेंटिमेंटल वाकया, उसी का जिक्र आयत 9 से ऑनवर्ड देखिएगा, आरई तल्लसी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। क्या आपने उस शख्स को देखा है जो रोकता है बंदे को जबकि वो नमाज पढ़े। यहाँ अल्लाजी से मुराद अबू जहल है और अबदन से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आ रई तइन काना अलल हुदा अव अमरा बित्तक्वा, आ रई तइन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यालम बिअन्नल्लाह खयरा। चंद आयतों में उसको ज़रा सी सरजिश की गई। आगे देखिए जो जुमला आपके साथ शेयर करने लगी थी, कल्ला हरगिज़ नहीं, नेवर, लइल्लम यन्तही, अगर ये बास नहीं आएगा, यानी ये शख्स मेरे प्यारे नबी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने से बास नहीं आएगा ना, लनस्फम बिन नासिया, लनस्फन, सोचिए जरा, बिन नासिया, नासियतिन काजिबतिन खातिया, यहाँ लफ्ज़ जो आपको दिखाना है वो नासिया दिखाना है। फिर हम उसको पेशानी के बल पकड़ेंगे, यानी जैसे सर के ये जो आगे का हिस्सा ना कि जहाँ से बालों को पकड़ कर झुकाया जाए। आज जाकर पढ़ लीजिए, आप देखिए कि ये ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ तकब्बुर होता है, खुद के कुछ होने का एहसास, खुद को बड़ा करना। तभी तो आप कहते हैं ना इज्जत का मसला है, पेशानी का मसला। और अल्लाह ने फरमा भी दिया कि नासियतिन कासिबतिन खातिया, झूठी पेशानी, खताएं करने वाली पेशानी। तो क्या पता चला कि जब हम पैदा होते हैं तो हम सब के दिमाग तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बाद में मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में पेश आने वाले कुछ अवामिल इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देते हैं। चार जुमले एक जुमले में बदल दूँ, हम जब पैदा होते हैं तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बाद में मुख्तलिफ शख्सियात में क्यों ढल जाते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमें कि हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो नंबर एक है उसमें वाक़यात। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है किसी बच्चे के साथ, किसी इंसान के साथ, कि जिसकी वजह से उसका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, या वो कह लीजिए कि क्लैरिटी से हटकर वो कन्फ्यूजन में चला जाता है, शफाफियत से हटके तजब्जुब में आने लग जाता है। फिर इसी तरह अब ये वाक़ बाज़ बड़े घिनौने होते हैं, मसलन बचपन में कुछ बच्चों को इस तरीके से मिसट्रीट किया जाता है, बड़े होने तक वो मुजरिम बन चुके होते हैं। ऐसे कई वाक़ हमारे सामने भी आते हैं जब दुख सुख के सेशंस होते हैं, फिर वो बताती हैं कि बचपन में फलां रिश्तेदार ने ये गलत हरकत की थी, उससे लेके आज तक वो बच्ची नॉर्मल ही नहीं हुई। आजकल तो खैर ये चीज़ कोई बड़ी रही नहीं छुपी ढकी, पहले दौर में तो बहुत थी। आज छोटे छोटे बच्चों को जैसे ट्रीट किया जाता है, अल्लाह ताला माफ़ करे, जानवरों की तरह, वो बच्चों की पर्सनैलिटियाँ ख़राब हो जाती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक दूसरी चीज़ है, हादसात हो जाते हैं। मसलन 2-3 साल की उम्र में थे तो माँ का इंतकाल हो गया, अभी बच्चियाँ छोटी ही थी तो बाप की डेथ हो गई, अभी बेटे 12-14 साल के हुए तो बाप चला गया। अब उस हादसे ने ना उनके माइंड को चेंज कर दिया। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं क्योंकि बचपन से ही उनके ऊपर ये चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ जो हमारे दिमाग पे असर डालती है, जिससे हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है या वीक हो जाता है, वो क्या है, तालीम। तालीम कुछ को बहुत अच्छी मिल जाती है तो वो माशरे इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, कुछ सतह कलबी मिल जाती है। अच्छा उस्ताद मिल जाना, मैं सोचती हूँ अच्छे माँ बाप के मिल जाने से बड़ी नेमत है। माँ बाप तो सबके, हिंदू भी माँ बाप है, मुसलमान भी माँ बाप है, क्रिश्चियन भी माँ बाप है, यहूदी भी माँ बाप है, नमाजी भी है तो बेनमाजी भी हैं। किसी को माँ बाप मिले हैं और मिलते ही फौत हो गए माँ बाप या चले गए हैं, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना अच्छा उस्ताद ना मिले। वही बात है कि माँ बाप दुनिया में लाने का जरिया बनते हैं और उस्ताद ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का जरिया बनते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ एक बहुत असर डालती है। आप कभी नहीं मान सकते कि जी को तालीम ले या ना ले वो उसका एक ही इंटेलेक्ट होगा। कभी आप बैठकर देहातियों का आपस में बातें करते तो देखा करें, यकीन करें वो किसी बड़े आला से आला दर्जे पे भी पहुंच जाते हैं ना, लेकिन तू मैं तय तकार के बगैर बात नहीं करते, टोन ही नहीं अच्छी होती। शहर के और गांव के बंदे में एक बहुत बड़ा फर्क टोन का होता है, वो स्पेसिफिकेटेड होंगे, वो बेतकल्फी में तू ताँ करते रहेंगे, वो बच्चे को बुलाएंगे तो आप कीजिए, आप उठिए, और मे भी अगर ज़्यादा तालीम ना मिले तो इंसान तूतकारी कर दे। बच्चे को पहले हम थप्पड़ लगाते हैं फिर कान पकड़ के बात करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं बच्चे को टच भी ना करें, तो तालीम का बहुत बड़ा असर होता है। फिर अगली चीज़ जो है वो है मुतालिया। तालीम से बिल्कुल फ़र्क चीज़ है मुतालिया, क्योंकि आज हमारे यहाँ तालीम का तो ज़ोर शोर है क्योंकि कैरियर बिल्डिंग है उसमें, लेकिन मुतालिया कोई नहीं है। आज स्टडी बुक रीडिंग तो ख़त्म ही हो गई, चलते फिरते हमारे 2-2 मिनट के तो मदरसे हैं, बस हम 2 मिनट का क्लिप सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कोई 2 मिनट का जैम बता दें देख लें तो वाह वाह करेंगे, कौन बैठकर इमाम अहमद रहमहुल्ला की तरह 25-25, 30-30 जिल्दों की मुस्नद अहमद छोड़ कर जाए। तो मुतालिया करने वाला और ना करने वाला इनकी दो की बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट बनने लग जाते हैं। और इसी तरह से फिर एक चीज़ हालात भी हैं, ये अमूमन जवान होने के बाद होते हैं, वाकियत बचपन में होते हैं, हालात जवानी में असरअंदाज होते हैं। अब अगर आप देखें तो ये पांच चीज़ें हैं, इन पांच में से जब आप अलग होते हैं तो ज़ारे पांच किस्म की शख्सियात बन के निकलेंगी ना। आप अपने ऊपर इसको लीजिए, आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने कुछ आपके साथ गलत तो नहीं किया। आप जितना ज़्यादा अपने माजी में झांकेंगे ना आपका मुस्तकबिल ठीक होगा। आज भी जो साइकाट्रिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह ना करे कोई जाए, लेकिन ना जाए बगैर ही मैं आपको भी बता देती हूँ, वो आपको पहले बड़े आराम से बिठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, सॉफ्ट वो रिक्लाइनर टाइप चेयर, फिर वो कहेंगे आप यू फील फ्री, यू आर रिलैक्स्ड, यू कैन फील नो वन इज़ विद यू, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ। वही किस्म का जिसको हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा कहते हैं ना हिप्नोटाइज करना। अच्छा वो बंदा ना बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर वो उसको कहते हैं अच्छा सोचो तुम एक बेबी हो, भला तुम्हें अपनी सबसे पहली क्या बात याद आ रही है। रियली वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसके बाद वो बंदा वाकई माजी में चला जाता है। फिर वो कहते हैं ओके थिंक, सबसे पुरानी बात तुम्हें क्या याद है, तुम्हें अपने स्कूल का पहला दिन याद है, अच्छा तुम्हें वो याद है जोड़ा जो तुमने ईद पे पहना था, अच्छा तुम्हें वो अब्बा क्या थप्पड़ याद है, वो बोला किस बात पे बड़ा था। यकीन करें ब्रेन में तो सब है। मैं आपको इसकी ना एक मिसाल देती हूँ फिर आप इंजॉय करेंगे। आपके पास पुरानी फाइलें पड़ी हैं बचपन से ही, हो सकता है किसी की माँ इतनी सुगढ़ है या फिर इतनी माशाल्लाह फारिग है कि उसने आपकी बचपन की किताबें भी संभाली हुई हैं, या कोई ऑफिस में काम करने वाला कैरियर 10-15 साल से जॉब कर रहा है तो डे वन की फाइलें भी उसके कहीं ऑफिस के कोने में पड़ी हैं। अब वो फाइल्स पड़ी तो होती हैं, मिलती नहीं है वक्त पे, या इस कुछ खवातीन के माशाल्लाह पेरेंट्स पेंट्रीज में बेशुमार मसाले, दालें, खाने पीने पुराने पुराने, उनको पता ही नहीं होता। तो किसी दिन कोई आए कहते चलो जरा खोलो तो सही है क्या, और जब पटारा खुलता है तो उसमें क्या क्या निकलता है। बिल्कुल लिखिए इसी तरह हम सब के जहनों के अंदर पुरानी फाइलें मौजूद होती हैं, एक के ऊपर दूसरी फाइल आती ही जाती है, आई ही जाती है। अब जो लोग कंप्यूटर के साथी हैं वो मेरी इस मिसाल से सीखेंगे बहुत कुछ, या उनको पहले ही आती होगी। देखिए हमारे पास हजारों फाइल्स होती हैं माशाल्लाह, अब तो मुझे नहीं पता कितनी होंगी। अब वो सेव होती रहती हैं रोज 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 रोज, बिलफर्ज उनको साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करके एडिट करके आगे नेट पे ना डाला जाए। जरूरत पड़ती है कभी, वो फलां किधर गया, वो किधर, हाँ था, होता तो था, वो शायद उस पे था, अच्छा वो उस पे था, वो उस वन रैप के लिंक पे था, अच्छा वो उधर था, वो FTP थे, वो किताब में था, वो उसमें था। अब हमें सोचते वक्त टाइम लगता है ना, फिर किसी दिन अगर किसी को टाइम मिल जाए और वो पुराने अपने फोल्डर खोले कंप्यूटर के, पुराने डॉक्यूमेंट्स खोले, तो अंदर से क्या क्या निकलता है। इसी तरह याद रखिए हमारे जहन की फाइलों में डे वन से नहीं बल्कि हदीस को साथ जोड़ लीजिए, वादे अलस्त जो दुनिया में आने से पहले भी करके आए थे ना अल्लाह से, वो भी याद है। सब कॉन्शियस में अल्लाह ने उसको फीड कर दिया। आपके कंप्यूटर के डाटा में अलस्तु बिरब्बिकुम की फाइल सेव्ड है। फर्क क्या पड़ा कि बस उसके ऊपर कितनी ही और फाइलें आती गईं आती गईं। अच्छा कुछ ऐसी मेमोरी स्टेशंस होते हैं कि जब उनकी अपनी मेमोरी पूरी हो जाती है ना तो फिर वो पिछली चीज़ों के ऊपर आपकी चीज़ें सेव करने लग जाते हैं। ऐसे भी सेटअप मैंने खुद भी सॉफ्टवेयर देखे और यूज़ किए मैं, क्या हुआ जी वो जब जगह ख़त्म हुई तो फिर नई फाइलें अब उसमें सेव हो गई तो पिछली डिलीट हो गई। बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन के अंदर ये सब कुछ होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ योर ब्रेन वाइजली, चाहते कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारा दिमाग दूसरे ही खा जाए और कच्चा पक्का खट्टा काला पीला रला मिला खाएं, और कि क्या ब्रेन था आपका मल्टी कलर का। और कितने लोग चाहते हैं आप में से कि मैं अपने ब्रेन की फाइल्स को सॉर्ट आउट करूं। आप अपनी ज़िंदगी के डे वन से स्टार्ट लें, मसलन चले हम अपने इस दीन के सीखने सिखाने को लेते हैं। सुनने वालों में से कोई अपना सफ़र याद करे, स्कूल में मेरा पहला दिन, मैंने कब पहला दर्स सुना, कब पहली दफ़ा कुरान की किसी आयत ने मुझे हिट किया। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक के लिए मारूफ है ना कि उनको एक तो सूरत मारिज की वो आयतें जिसमें था कि ये किसी काहिन का कलाम नहीं और ये कोई शायर का नहीं है, उससे उनके दिल में एक जगह बन गई थी कि कुरान सच्चा। और फिर उसके ऊपर बहन ने जब कुरान पढ़ा तो जुबान पे आ गई बात। आप सोचिए बैठकर किसी दिन कागज़ कलम, ऐसे ही आप भी हिप्नोटाइज हो जाएं, वो जो 100 पाउंड 200 पाउंड आपने साइकेट्रिस्ट को देने हैं ना वो सदके में दे दें। लेकिन लिखिए आपको नाकामी की जिंदगी में जो आपकी है आपके बकौल चार चीजें नजर आ जाएंगी, वो लिख लीजिए जल्दी से। यानी मैं फिर बोल देती हूँ, डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। आपकी मेरी नाकामियों की वजूहात बाहर नहीं अंदर हैं। आई एम माई एनिमी, मैं सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन खुद को समझूं, फिर बात समझूंगी। जब आपने पुरानी फाइलें ढूंढनी है ना ब्रेन का, ऐसे सॉर्ट आउट करते जाएं, अच्छा फिर ये, अच्छा मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बाद क्या हुआ, अच्छा मैंने वहाँ क्लास शुरू की फिर उसका एंड क्या हुआ, फिर मैंने वहाँ जाकर एक अच्छा काम शुरू करने की कोशिश की, कितने दिन चला, अच्छा महीना साल बहुत पॉपअप हो गया, फिर क्या हो गया। यानी आप में से हर एक अपनी फील्ड को ले, मैं तो अपनी ले रही हूँ ना इसलिए बार बार पढ़ना पढ़ाना कह रही हूँ, हालांकि मेरे इस सेशन से सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वाले ही नहीं फ़ायदा ले सकते, कोई भी डॉक्टर ले लीजिए, चलिए आप कहेंगे ये भी आपका पैशन है। जो मुस्तकिल सुनते हैं उनको तो पता चल गया कि मुझे बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, अब एक ही शौक है कि कभी मरीज ना बनूं। अल्लाह मैंने बीमार नहीं होना, मेरे पास वक्त नहीं है बीमार होने का, है। चलिए आपको चार में से एक वजह कम से कम मिलेगी जो मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपकी नाकामी की वजह होगी, अगर आप नाकाम है। और अगर दूसरे लफ्जों में कहें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम तो नहीं है लेकिन उतने कामयाब नहीं है जितना आप होना चाहते हैं, तो नंबर एक कुव्वत इरादे की कमी, लो विल पावर। मजबूत कुव्वत इरादी आपको इस्तकामत देती है। जी ये लिखना पड़ेगा, जब आप कई काम का इरादा करें फिर छोड़ें, करें फिर छोड़ें, करें फिर छोड़ें, तो गोया कि आपने नाकामी को खुद ही चाय पे बुला लिया। वो जरूर आएगी एक दफा आपके पास, क्यों आएगी भला, कि आप किसी भी काम को करते हैं फिर छोड़ते हैं फिर छोड़ते हैं। इसी पे मैंने एक जुमला पीछे बोला था कि इस्तकामत का दूसरा नाम करामत है। आप इस्तकामत के साथ एक काम पे जमे रहें, अल्लाह ताला जरूर कामयाबी की करामत कर देगा आपके हाथ में। मुस्तकिल मिजाज बंदा कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। और मैंने एक जुमला किसी से बोला कि आपने हांडी पकाने वालों के हाथ में कंप्यूटर पकड़ा दिया। चूल्हा बंद करके एक औरत आती है और कहती है, ठहर ना जरा, बताना कौन सा बटन दबाना था। फिर भी कर जाती है ना। यकीन करें, हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स अगर नहीं भी है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाज है ना, तो आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। खुद को यकीन दिलाइए। हमारी नाकामी की वजह क्या, हम तजर्बे बड़े करते हैं। आपने देखा ही होगा, लोग बड़ा ये तजर्बे करते हैं, नहीं अब मैंने ये सोचा है। अच्छा, कुछ ब्रदर्स हमारे अपने लोग, माशाल्लाह, कारोबार 2 साल एक काम किया, नहीं 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 ये ख़राब है, ये नहीं हो सकता, नहीं, अब मैं एक और नया बिज़नेस शुरू करने लगा हूँ। तो वो किधर गया, वो जो उसमें इतना आपने 2 करोड़ रुपया लगाए, तो वो तो फिर डूब ही गया। इसमें भी एक बात किसी अपने प्यारे से सीखी हुई है, चीज़ जहाँ गुम होती है ना, वहीं से ढूंढनी चाहिए तो मिल जाती है। मसा देखिए, चवन्नी गुम गई, किसी बच्चे के हाथ से गिरी, गुम गई। अब तो चवन्नी होती नहीं, कॉइन कह लीजिए। कॉइन गिरा खेल के दौरान, गुम गया, जेब में हाथ डाला, कोई नहीं, किधर मिलेगा? वो उसी प्ले ग्राउंड में कहीं घास के पीछे छुपा होगा। अगर आपकी कामयाबी गुम गई थी ना, उसको वहीं से ढूंढें। लोग बार बार कारोबार बदल कर अपना पिछला सारा तजुर्बा किल करते थे, तो बार बार बिजनेस नहीं बदलना चाहिए, बार बार गाड़ी का रंग नहीं बदलना चाहिए, बार बार अपने लोगों का रंग नहीं बदलना चाहिए, बार बार अपना मोनोग्राम नहीं चेंज करना चाहिए। क्यों? लोगों के दिमागों में चल चुका है, उसको मत जाने दे। ये मार्केटिंग का है, आपको मैंने एक दो मिसालें दी हैं। अगर आपने एक कलर किसी को अपने नाम से दे दिया ना, बस ब्लू, ये भी एक मौके पे हमने अपने नूर कुरान के प्लेटफॉर्म पे देखा था, पुरानी बात है, वेबसाइट थी नई बन रही थी, तो जिनके साथ हमारी चल रही थी मीटिंग्स, तो कलर स्कीम पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपकी पहले क्या है, तो हमने कहा ये, तो कहने लगे फिर मेरा मशवरा डिज़ाइन नया कर लें, उसके अंदर जो मर्जी कर लें, रंग ना बदलें, क्योंकि लोगों के जहन में लफ्ज़ नूरुल कुरान के साथ ये रंग जम चुका है। इट्स 100% ट्रू। तो फिर कुव्वत इरादे की कमी ये ज़िंदगी में नाकाम कर देती है बंदे को। दूसरी चीज़ क्या कि खुद ज़हनी तौर पे तैयार ना होना। जी, आप दूसरों को कहाँ ढूंढेंगे, आपने तभी खुद को नहीं ढूंढा। खुद को दरियाफ्त करना है और ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल बेहतर करना। ये ऐसे ही है कि जैसे, बस देखिए, मैं आपको पढ़ाने बैठी तो मैं तैयार ही नहीं थी। मेरे सामने इस वक्त भी स्क्रीन है, आपके सामने भी है, जो लोग मतलब वीडियो के साथ देखते हैं, लिखते हैं, और मैं स्क्रीन को सिर्फ अपने माइंड को आपके साथ रखने के लिए, या कहना चाहिए कि एक सांचे में रखने के लिए बोलती हूँ, और दैट्स इट। दूसरी तरफ हमेशा मेरा सादा कुरान होता है, ज़रूरत पड़े तो खोलती हूँ, लेकिन बस ये ना हो तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे माँ का बच्चा पास ना होना। और मुसहफ भी मेरे पास वो होता है जो सऊदी अरब से आता है, ब्लू कलर का। इसके अलावा किसी कुरान पे मेरी नज़रें ही नहीं टिकती। और लेफ्ट साइड पे इस वक्त भी मेरे पास जूम का रूम खुला हुआ है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप देखिए कि अगर ये तैयारी मैंने ना की हो, एक ख़ास जगह मेरा माइक होता है, एक जगह लैपटॉप है, सब चीज़ों को सेट करके बैठती हूँ, फिर भी गड़बड़े होती हैं, लेकिन ये ना हो तो मैं पढ़ा ही ना सकूँ। बीच में चीज़ें ढूंढूँ, सफ़ों की आवाज़ें आएँ, पलटें, ये करें, तब तब नहीं होगा। तो कोई भी काम करने से पहले नंबर एक, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं जब हम होते तो हम नाकाम होंगे। इलाज क्या है? ख़ुद को दरियाफ्त कीजिए, अपना वीक पॉइंट ढूंढिए। आप किस किस्म के माहौल में कामयाबी के साथ काम करते हैं, इसी तरह काम करेंगे, किस तरह आप नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि चीज़ें ही वाजे नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, गोल ही वाजे नहीं। ऐसे है कि प्ले ग्राउंड में बॉल तो है, लेकिन वो घास के रंग का नज़र ही नहीं आ रहा। अपने दोस्त और दुश्मन में वाज़ेह फ़र्क मालूम होना चाहिए। हमें जब चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, सभी अच्छे लग रहे हैं, वो कहते हैं ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, कुछ इस किस्म का शेर पढ़ा था कभी जवानी में। क्या पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो शेर के नाम पे हंसी, एक लफ्ज़ जवानी के नाम पे हंसी। कि इंसान अपनी ज़िंदगी पे गौर करता है ना, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। आपकी जवानी उस दिन ख़त्म होती है जिस दिन आप खुद को बूढ़ा समझेंगे, अदरवाइज उम्र तो सिर्फ गिरहें लगाती हैं सालों की। तो तीसरी चीज़ नोट कर लें फिलहाल, कि चीज़ें यहाँ पे वाजे नहीं। कितने लोग कहते हैं पता नहीं इनको हमसे क्या चाहिए, मैंने क्या गलत कर दिया, क्या नहीं था कहना चाहिए। दैट मीन अभी आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, यानी हेल्थ आपकी माइंड की सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है करना क्या। लेकिन मैं इधर आके पढ़ाऊँ, मैं आपसे पूछूँ क्या पढ़ना था आज, ये आज कौन सी क्लास थी, अच्छा आज मैंने आपसे क्या पढ़ाना है, अच्छा ये आज के टॉपिक में क्या क्या आना था, मुझे बताइए, मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगी। और कई लोग मेरे जैसे होंगे, मैं भी करती होंगी आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया, मैं मानती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ आके बैठती हूँ ना, अल्लाह से एक दुआ करके बैठती हूँ कि अल्लाह मैं नहीं बोलूँगी, तू बुलवाएगा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी وَأَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. پھر اللہ ایسی چیزیں باتیں کرتا ہے، 10 سال پرانی پڑھی سنی بات دماغ میں ایسے پاپ اپ ہوتی ہے، میں خود کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ آیا کہاں سے ہے. ایسے حدیث پہ حدیث ٹک ہوتی ہے، ایسے آیتیں یاد آتی ہیں. میں نے پچھلے 2 سال میں نہیں کبھی وہ ٹاپک سوچا ہوتا جو اس موقع پہ اس آیت کے مطابق میرے ذہن میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے برہان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. تو چیزیں واضح نہ ہوں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. پیپر پلان ہی کلیئر نہیں ہے، فلور پلان ہی ٹھیک نہیں ہے، تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ اور یہ بہت ساروں کی یہ وجہ ہوتی ہے. کرنا کہ دین کے نام پہ بھی کیا کرنا ہے یہی نہیں پتا. پڑھ رہے تھے پڑھ رہے ہیں، تجوید کر رہے ہیں تجوید ہی کرتے جا رہے ہیں، حفظ کر رہے حفظ پہ لگ گئے، حفظ کرتے کرتے ایک دم پیچھے پڑے تو دوسری پہ چلے گئے، تیسری نہیں نہیں اب میں نے یہ شروع کر دیا، اب میں فلاں کورس کر رہی ہوں. ضائع کر رہے ہیں آپ خود کو، بیچ میں سے چین ٹوٹی ہوئی ہے. اتنی کلیئرٹی چاہیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے. لیکن اب چلتے ہیں ناکامی کی چوتھی وجہ پہ، اور وہ ہے کہ منصوبہ ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں. صرف ایک ہی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اور وہ خاندانی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. 2 بچے اور پتہ نہیں کیسا گھرانہ، حسرتوں بھرا اور مظلومیوں والا گھرانہ. نہ بھائی کے پاس بہن ہے، نہ بہن کے پاس بھائی، اور کیا ہر ایک کو بیٹا بیٹی مل جاتے فرسٹ اٹیمپٹ میں. 2 بچے خوشحال گھرانہ جو ہے، تو آپ کیا سوچتے پہلی دفعہ اللہ کو آرڈر کریں گے اللہ جی بیٹا دے دے، بیٹا آ گیا. اگلی پھر 2-3 سال بعد کہیں گے اللہ جی اب ایک بیٹی دے، بس ختم ہو. سویٹ ہوم، سویٹ بیکار ترین ہوم ہے آپ کا. یہ جملہ لکھے گا، آپ اپنے بچے کو جو بہترین گفٹ دے سکتے ہیں نا، وہ بھائی اور بہن کا گفٹ ہے. تو بہرحال منصوبے کوئی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. طویل اور قلیل مدت کے منصوبے بنائیے. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پلان، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. میں نے ابھی شروع میں کچھ ذکر کیا نا، اگر آپ کے پاس 1 سال کا، یعنی 1 سال جیسے 2020 سے 2021 تک کا پلانر منتھ وائز ویک وائز ڈے وائز ہے، تو الحمدللہ آپ نے شارٹ ٹرم پلاننگ کر لی ہے. اور اگر آپ کے پاس 5 سال کا ہے تو آپ ماشاءاللہ شارٹ سے لانگ ٹرم کی طرف چل پڑے. اور 10 ایئرز پلان جس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کبھی خود کو نہ کہے کہ میں نے بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوئی ہے. اور ہم پلاننگ کے نا، میں نے پلاننگ کی بہت اچھی کیا کی ہے، آج میں نے یہ جوڑا پہننا ہے، مہندی پہ یہ پہنوں گی، اپٹن پہ یہ پہنوں گی، آج یہ پکائیں گے کل وہ پکے گا، تو پلان تو پھر وہی ہے. چلیے اب آپ نے تو سوچا تو آپ کو فکر لگ گئی. ناکامی کی 4 وجوہات میں اگر آپ نے غور کیا نا، تو میرا یقین ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ آئی نیڈ ٹو ڈسکور مائی سیلف. خود آگاہی مینیفیسٹ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، پہلے خود کو پہچاننے. اور یہاں مجھے پھر سورہ زاریات یاد آ گئی ہے، فی انفسکم 27 پارہ ہے، جس میں اللہ نے آپ کو مجھے سورت زاریات میں ایک پیغام دیا. کیونکہ دیکھیے قرآن جو ہے نا، یہ ایک سمندر ہے، اس میں کود جائیے آپ کو باقی سارے کام کرنے آسان لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس بات کو بتا دیا کہ اللہ نے تمہاری اپنی ذات کے اندر، جی 21 آیت ہے، وفی انفسکم، تمہاری تو اپنی ذات میں اتنی نشانی ہے، افلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھو گے. پھر آگے آتا پیچھے وفی الارض آیات کا، زمین میں نشانی ہے یقین رکھنے والوں کے لیے. اس سے آگے آ رہا ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور آگے یعنی نشانیوں کی بات میں ایک آیت میں کیا ہے کہ تمہارے تو اپنے وجود میں بڑی نشانی ہے. تو اس کو خود آگہی کہتے ہیں، خود کو جانی. ہم دوسروں کو جانتے ہیں، دوسروں کے تو ہم اشارے جانتے ہیں، اور نند کے تو دل میں کیا تھا اور اس کی آنکھ کے اشارے سے آپ پوری سٹوری سمجھ گئے، جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی اور ان کی تو میں اشارے پڑ جاتی ہوں، اور انہوں نے لگا کے مجھے سنائی اور کھڑی 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 سنا دی. خود کو نہیں پہچانتے تو خود کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں نا، تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. مثلا آپ دیکھیے کہ چیزیں پہلے تخیل میں بنتی ہیں، پھر حقیقت کا روپ دھارتی ہیں. اگر آپ اپنے خیالوں میں ایک کامیاب انسان نہیں بن چکے نا ابھی تک، تو معذرت کے ساتھ آپ ریئل میں نہیں بنیں گے. اف یو آر ناٹ اے سکسیزفل لائر، سکسیزفل اکاؤنٹنٹ، سکسیزفل ڈاکٹر، سکسیز مدر فادر ٹیچر ایڈمن ذمہ دار، جب تک آپ اپنے اندر ایک یہ تصور نہیں رکھیں گے آپ کبھی نہیں بنائیں گے. بلکہ اس میں مجھے یاد ہے محمد شریف، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت عرصے سے نہیں سنا لیکن بہت پرانی ان کی بات، یعنی ویژولائز کراتے تھے وہ. یہ المغرب ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، ہیوسٹن میں تھے، ہم لوگ پرسنلی بھی ان سے مل چکے اور الحمدللہ ان سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے. تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، کہتے تھے کہ آپ پہلے ویژولائز کریں کہ آپ جنت میں ہیں، پھر وہاں ایک محل کے باہر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، پھر وہاں بہت بڑی سی گاڑی کھڑی ہے ٹک ٹک، پھر اس کے باہر آپ کے ملازم یہ وہ، بات آگے آپ سمجھ گئے. اگر آپ اور میں جنت کا گھر نہیں پہلے سوچیں گے نا اپنا، تو باہر جا کے وہاں نہیں سمجھیں گے. سورت طور میں آپ پڑھ کر آئے ہیں یہ بات، اس دورے قرآن میں اشارتاً ذکر کی تھی کہ اپنے جنت کے گھر سوچئے کیسے ہوں گے. अब जब आप वहां अपने सेट को करें ना, उसको फिर अपनी नजरों के सामने किसी व्हाइट बोर्ड या पिन बोर्ड पे ना एक स्केच की सूरत में डाल लीजिए, माइंड मैप बना लें, आपको ही उसकी एक्टिविटी शीट बना लीजिए कि मैं जन्नत में हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है, ये है। अब आप दिन रात उसको देखें, बस इंशाल्लाह कोशिशें सही में बदलेंगी, स्ट्रगल स्ट्राइव में बदलेगी, और इसी तरह से फिर आप एक दिन वहां मौजूद होंगे और आप कहेंगे ये है मेरे ख्वाबों की जन्नत, ड्रीम कम्स ट्रू। जुमला लिखिएगा, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो हमारी सोचें होती हैं ना वो चीज़ों में ढल जाती हैं। जब आपने ड्रीम देखे ही कोई नहीं है तो सच हो भी गए तो आपको कैसे पता लगेगा। कुछ लोगों का हाल यही होता है, वो पकड़ पकड़ के लोग ही उनको कामयाब कर दे तो वो कर देते हैं। एक बहुत अमीर शख्स था, लोगों को चैलेंज करना और अपने पैसे फेंकना उसकी आदत थी। उसने एक स्विमिंग पूल बड़ा सा बनवाया, या बना होगा, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए। अच्छा, अब उसने एक ऐलान किया, कौन है जो इस स्विमिंग पूल के इस कोने से दूसरे कोने पे उतर है और उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी थी वो लेके आ जाए तो मैं उसको $1,00,000 दूंगा। ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, उसने पता नहीं क्या कहा होगा। अब मुंह में लोगों के राल टपके, पानी आए, $1,00,000, वाह जी वाह, क्या कुछ नहीं होगा। पर मसला कह के बीच के मगरमच्छ नजर आ रहे हैं, जो आप को पूरा ना खा सके तो आधा खा लेंगे, कुछ तो कुछ खाएंगे। लोग परेशान है, जमा शौक है, कह रहे हिम्मत, लेकिन आखिर आगे हो के ना ना ना, हम नहीं ये कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इतने में क्या हुआ कि एक शख्स थड़म से उस स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। अब जब अंदर गया तो मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़े, उनसे स्ट्रगल करता कराता, इधर से पाँव से उनसे दिफा कर, आंख हाथ कर करके जल्दी से तैर के तो दूसरे किनारे की तरफ आ गया, और उधर जो खड़े थे उन्होंने हाथ पकड़ा तो ऊपर आ गया, जख्मी, खून से लहूलुहान। खैर, मरहम पट्टी की सही हुए। अब टेस्ट था किसका, जिसने चैलेंज किया था उसको बुलाया गया। उसने कहा कि वाह जी वाह, मैंने इतना करजियस बंदा जिंदगी में नहीं देखा। देखिए, कामयाब है ना तो फिर हिम्मत कीजिए, टूटे फटे इशारों वाले देखते हैं, सोचते हैं, मशवरा करते हैं। ये गोया कि ये चाह रहे हैं कि हमारा ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, हम दूसरों से जरा उधार लेते हैं थोड़ी देर। गलत तरीका है, खतरों में कूदिए। मैंने अल्लाह के नबी से खतरों में कूदना सीखा है। ये खंदक की जंग ऐसी तो नहीं थी जो लड़ी जाती है। अल्लाह के नबी एक पैगाम देते, नहीं जी हम हार मानते हैं, ये मदीना का एक कोना तुम ले लो और हम तुमसे ये शर्तें मान लेते हैं, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। मेरे नबी ने ये नहीं किया, आप एडवेंचरस भी थे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते थे। खैर, अब क्या हुआ, वो स्टोरी पूरी कर लीजिए कि जब वो बंदा ठीक हुआ, वो बंदा बुलाएगा, अब लोग कहते इसने देना का $1,00,000 तो बहुत होता है। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम बहुत ब्रेव शख्स हो ना तो आई एम मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी अपने अल्फाज को निभाने वाला हूँ, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा, ये पकड़ो चेक। बट एक बात तो बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा था कूदते हुए कि तुम मर भी तो सकते हो ना? तो जो शख्स जिसको $1,00,000 मिलना था ना, उसने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, मेरा भी एक सवाल है, पहले उसका भी कोई जवाब मुझे दे दे। अब लोग जो खड़े थे उस वक्त भी मैच देखने, अब बताओ क्या सवाल है। अब ये जुमला लिख लीजिएगा, कहता ये तो बताओ मुझे धक्का किसने दिया था, मुझे धक्का किसने दिया था, ये है मेरा आपका जवाब। कभी कभी जिंदगी में कामयाब होने के लिए धक्के की जरूरत होती है। दुआ कीजिए आपको कोई धकेलने वाला मिल जाए नेकियों में। हजरत इस्माइल का जिक्र आया था सूरह मरियम में, कि खुद भी नमाज पढ़ते थे और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। आयत नंबर है 55 सूरत मरियम, उससे आगे की आयतें भी हैं। हजरत इस्माइल का जिक्र है, वस्कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। और जिक्र कीजिए किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का, वो वादे के सच्चे थे और थे भी रसूल और नबी। व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, और वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। बस जका, और जक़ात का। वकान इंदा रब्बी ही मरदिया, और वो अल्लाह के यहाँ बड़े ही प्यारे थे, यानी अल्लाह के चहेते थे। और वो अपने घर वालों को कैसे देते थे, वो हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो लोग गए फिर वो अपनी औलादों को भी नेकियों का हुक्म देते चले गए। फाबुदूहु वस्तबिर लिबादती, आयत 65 इसी सूरत की है, यानी एक से ज्यादा जगह पे कुरान पाक में ये बात मिलती है। तो ज़िंदगी में कुछ साथी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दें, पुश कर दें। बंदा डरता है बच्चों की तरह, नहीं 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 मैं गिर जाऊंगा। आप पानी के पाँव करें ना बच्चे का, समंदर पे ले जाएं तो उसको किधर, वो डर, नहीं मैंने नहीं मैंने, फिर बाप पकड़ के ऊपर से उसका पाँव, हाय मैं मर गया। फिर ऐसे ऐसे उसको मजा आने लगता है, फिर उसके बाद आगे से आगे से आगे, फिर उसको लगता है कि आप बाप कहता है पीछे रुक जाओ तो वो रुकता ही नहीं है। तो क्या करें, खुद को ढूंढिए। चलिए आज खुद को ढूंढते हैं। हमने बहुत सारे अखबार पढ़ लिए, आज अपनी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों को गौर से पहले समझते रहिए। खुद आगही से क्या मुराद है? मैनोफेस्ट। आपको खुद पता हो कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। बस वो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हाफिज बने, बच्चे को पता ही नहीं होता। किसी बच्चे से मैंने कहा आप हाफिज बन रहे हो, क्यों? कहते मामा चाहती है मैं हाफिज बनूँ। इसी तरह एक बच्ची थी डॉक्टर बन रही थी, उसका बिल्कुल मिलान नहीं था। बेटा आप क्यों पढ़ती हैं, आपको मजा? कहती नो, क्यों? माई मॉम वॉन्ट दिस टू। नहीं, नंबर एक, आपको पता हो कि आप क्या सोचते हैं, सोच पर यकीन हो, यानी आपकी सोच बहुत यकीन वाली हो। फिर तखयल को महसूस कीजिए, और आखिर में आप ये डिसाइड कीजिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन को मुमकिन बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी थॉट्स थिंग्स में बदल जाएंगी। यानी थॉट्स गैर मादी चीज़ होती है, जो मादी चीज़ में ढलेगी जैसे थिंग। मतलब सोचो में आप क्या थे, लेकिन आप अब दूसरी तरफ रियल में एक डॉक्टर बन चुके होंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क मंजिल का है, चल दोनों रहे हैं। अगर आपको अपनी मंजिल मालूम नहीं तो आप सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल का पता मालूम हो तो आप पहुंच रहे हैं। ये जुमले भी एक बहुत ही मारूफ ट्रेनर हैं, उनकी जुबान के जुमले हैं, उन्होंने पता नहीं किससे सुना। लेकिन इल्म किसी की मिरास नहीं होता। मैं तो इस सारी बात को आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम सब आला मकासद हासिल करें। यानी ये जो सेशंस है ना, ये आपको बहुत रिलीजियस सेशंस ना भी लगे ना, लेकिन ये सबसे आला मकसद तक पहुंचने का जरिया है। हाई गोल्स हाई एम्स आप और मैं अपने ऊपर लेकर चलें। तो जजाकुमुल्लाह खैर। लेकिन ये जो टॉपिक था स्पेशली, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कब होता है, जब हम लोगों के क्वेश्चंस और उनके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की रोशनी में बात करें। तो मुझे यकीन है कि जो लोग साथ हैं उनको इससे फ़ायदा होगा।